जन्म देकर महान उत्सव मनाया है, उन राम जी के सामने जाकर मेरा सिर झुका करके प्रणाम कर देना। जो राम बड़ी अच्छी अच्छी माला पहनने के योग्य थे, जो राम बड़े बड़े रत्नों को धारण करते थे, जो बड़े भारी ऐश्वर्य के स्वामी थे, विशाल पृथ्वी सबके लिए दुर्लभ जो उनके लिए सुलभ थी, जो माता पिता की प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा त्याग करके आए थे, और सुमित्रा ने जिसको जन्म दिया, ऐसा लक्ष्मण अपने भाई की अनुकूलता को लेकर के वो भाई के साथ में आया है, और अपनी सारी अनुकूलता को न्योछावर कर भाई की प्रतिकूलता को जिसने अपने में स्वीकार किया है, ऐसे लक्ष्मण जो कि राम जी के अंदर मातृभाव पितृभाव देखते हैं और मुझमें मातृभाव देखते हैं, ऐसे लक्ष्मण को तुम उत्साहित करते हुए कहना कि लक्ष्मण तुम तो सीता को इस प्रकार से दुखी देख ही नहीं सकते थे, राम आप भी तो नहीं देख सकते थे, आप जल्दी से जल्दी रावण पर क्यों नहीं आक्रमण करते हो, ऐसे ऐसे उनको बहुत बार बोल देना, बार बार बोलना। राम ने बड़े बूढ़ों की सेवा की है, वे लक्ष्मीवान हैं और अपने पिता के परम प्रिय हैं, आज उनको पितृ सेवा को ध्यान में रखते हुए मेरी रक्षा करनी चाहिए। मत्तः प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः। इधर राम के लिए लक्ष्मण भी बहुत प्यारा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, राम को लक्ष्मण के प्रति अनुग्रह रखना भी चाहिए। या इसी लक्ष्मण को देख करके राम जी ने कभी अपने पिता का स्मरण भी नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मण राम जी की बहुत जो है आदर के साथ सेवा करता है। इन सबको मेरी बात बोल देना, और लक्ष्मण का स्वभाव बड़ा प्रिय है, बड़ा पवित्र है, राम के हृदय में बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए वानर श्रेष्ठ जैसे भी हो, मेरा भी दुख दूर हो, राम जी का भी दुख दूर हो, ऐसा आपको प्रयत्न करना चाहिए। मैं देखो अब थोड़े दिनों तक ही जीवित रह पाऊंगी, इतने में यदि आप कुछ कर सकते हो तो कर सकते हो, तुम्हारे सामने 2 महीने की आयु मुझे दी हुई है, अतएव मैं सत्यनाहं ब्रवीमि ते, बहुत सत्य पूर्वक आप बोलती हूँ कि हे हनुमान मेरी जल्दी से जल्दी रक्षा करो, और जो है जिस प्रकार से पातालादेव कौशिकी पाताल में गई हुई कौशिकी नदी का बाहर ले आए, ऐसे मुझे भी इस रावण के चंगुल से छुड़ाओ, और देखो ये मेरे पास एक दिव्य चूड़ामणि है, इस चूड़ामणि को तुम राम जी को दे देना। ऐसा करके अपनी चूड़ामणि मन बोरिया था, वो बोरिया सीता जी ने हनुमान जी को दे दिया, हनुमान जी ने उस बोरिए को लिया और लेकर के उस बोरिए का जो छेद है उस छेद में अपनी अंगुली डालनी चाहिए, परंतु पतले थे हनुमान जी, छोटे बने हुए थे, तब भी वो उनके अंगुली के अंदर नहीं गई, तब उन्होंने उसको आदर के साथ अपने सिर पर रखा और अपने पास में उस बोरिए को रखा, सीता जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके और जो है हर्षिण मेहता युक्त है सीता दर्शन, सीता जी के दर्शन करने से आज उनको जो परम प्रसन्नता हुई है वो परम प्रसन्नता उन्होंने बताई है कि आपके दर्शन से मेरा ये सब कुछ सफल हो गया। उन्होंने उस मणि को अपने हाथ में लिया और मणि को हाथ में लेकर अब वो जाने के लिए तैयार होते हैं। उस मणि को देने के बाद सीता जी ने कहा, हनुमान मैं अपने मन की और भी बात कहती हूँ, देखो जो ही तुम ले जाकर ये चूड़ामणि राम जी को दोगे, उसी समय में राम जी इस चूड़ामणि को देख करके 3 लोगों को याद करेंगे, एक तो मुझे याद करेंगे, एक मेरी माँ सुनैना को याद करेंगे और एक राजा दशरथ को याद करेंगे, 3 को याद करेंगे, वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च, 3 का स्मरण करेंगे। देखो पिता तो राम जी के और माँ मेरी और एक मैं, ये 3 की याद आएगी राम जी, और उनको बार बार मुझे बार बार उनको तुम जो है ये बताते रहना कि अब आपको जितना जल्दी हो सके सीता के उद्धार का प्रयत्न करना चाहिए। हनुमान यत्नम आस्थाय है, हे हनुमान देखो जैसे भी आपको प्रयत्न करना पड़े मेरा दुख दूर हो ऐसा आपको प्रयत्न करना ही चाहिए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो माता जी आप ऐसी कोई चिंता मत करो कि जिस प्रकार से आपके आपको ले जाने में कोई बाधा हो या आपको कोई रावण के विषय में कोई बाधा हो ऐसी कोई चिंता मत करो, क्योंकि यदि ऐसा ही होता तो इतनी बात कैसे बनती है। यदि आपको दुखी पाना होता तो मेरा यहाँ आना हो ही नहीं सकता था और फिर ये राम जी की अंगूठी आपको मिल ही नहीं सकती थी और मुझे ये आपका प्रसाद जो ये मिला है चूड़ा मणि का ये भी नहीं मिल सकता था। ये सब घटनाएं हो रही है, इसका मतलब आगे से आगे राम जी का कदम बढ़ रहा है तभी तो हो रही है। आप शोक को कम कीजिए। सीता जी ने कहा कि हनुमान राम लक्ष्मण सुग्रीव और उनके जितने बानर बड़े बूढ़े वे सब उनके सामने जाकर मेरी धर्मयुक्त बातों को देखो कहने कहने का भी एक ढंग होता है बानर, तुम इस ढंग की मुद्रा बना के कहना, तुम इस प्रकार से उनके सामने कहना कि वो किसी प्रकार से रह न सके और तत्काल मेरी प्राप्ति के लिए समाधान निकाले और जल्दी से जल्दी वो मेरे पास आने का प्रयत्न करें। वाच्यम वाचा आप ऐसी वाणी बोलिए ऐसी वाणी से बोलिए तभी जाकर ये काम बनेगा। उत्साह को कहीं पर भी रोकने से काम होने वाला नहीं है। मेरी प्राप्ति से महाराज राम का बड़ा भारी यश फैलेगा, सारे संसार में एक अपूर्व कीर्ति फैलेगी। रावण के मर जाने के बाद लोगों के मन में एक अपूर्व शांति आएगी। आते हुए काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। हनुमान ने कहा माता आप अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हो, अशोक वृक्ष तो यही प्रेरणा देता है कि शोक मत करो, जैसा वृक्ष है जैसा स्थान है वैसे ही आपको अपने मन में विचार रखना चाहिए। राम जी के पराक्रम में आप लेश मात्र भी संदेह मत कीजिए। मनुष्यों में असुरों में देवताओं में कोई ऐसा नहीं जो उनके सामने ठहर सके। अर्कम अपि पर्जन्यम अपि वैवस्वतम अपि, माने वो चाहे तो सूर्य को भी बदलों को भी साक्षात यमराज को भी अपने वश में कर सकते हैं। सागर पर्यंत पृथ्वी जिनके अधीन हुई हुई है, हे राम हे सीते ऐसे राम की कभी भी पराजय संभव नहीं है। सीता जी बात सुने, सीता जी बात सुनकर के बार बार पति को याद करते हुए कहते हैं कि देख देखो हनुमान एक काम करो, तुम आजाद या ठहर जाओ, तुम्हारे आने से मुझे यहाँ बड़ी शांति मिली है। तुम देखो आज या ठहर जाओ, कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तः सो गमिष्यति, अब आए हो और अभी तुम चले जाओगे तुमको विश्राम तो मिला नहीं। देखो अभी तुम आए हो, रात्रि में तुमने चक्कर लगा लिया और अब तुम मेरे पास आए हो और अब तुम वापिस जाते हो, कम से कम एक दिन यहाँ ठहरो तो सही, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने से मेरा शोक दूर हुआ है। थोड़ी देर में यदि आत्मीय व्यक्ति अपने पास बैठ करके शांति से प्रेम से बात करता है तो उससे सारे दुख भुला दिए जाते हैं। इसलिए हनुमान तुमने बहुत शांति से बातें की हैं, तो तुम जो है एक दिन और ठहर जाओ। ओहो हनुमान तुम यदि यहाँ से अभी चले जाओगे फिर मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं वहाँ बैठी बैठी सोचूंगी कि अब राम जी आ रहे होंगे, अब राम जी आ रहे होंगे, और मैं तो यहाँ जल्दी जल्दी आने की सोचूंगी क्योंकि मेरा तो ये स्वभाव है और तुम लोग अपने हिसाब से आओगे तो क्या पता तब तक मेरे प्राण बचे या न बचे, कोई पता नहीं। तुम्हारे न देखने से मेरे अंदर ये शोक और पैदा हो गया है, इसलिए क्या बताऊं, मेरे पर तो दुख पर दुख दुख पर दुख आ ही रहा है। इसलिए आ रहा है कि मेरी जगह कोई दूसरी स्त्री होती तो वो मर जाती, लेकिन विधाता मुझे इसलिए दुख दे रहा है कि मैं दुख को सहन कर करती हूं। ओहो हे वानर सागर तो बहुत बड़ा है, इस सागर को कौन पार कर सकता है, मेरी दृष्टि में सागर को केवल तीन व्यक्ति पार कर सकते हैं, एक तो वैन्ते माने गरुड़ जी, एक तुम और एक तुम्हारे पिता वायु, तीन ही पार कर सकते हैं और तो कोई पार करने में समर्थ नहीं है। मेरे विचार में कोई ऐसा है नहीं। तुम परम वीर हो और तुम राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठा करके यहाँ ला सकते हो, तब ये काम बनेगा। राम जी भी सागर को पार कैसे करेंगे ये भी समझ में नहीं आता है। बलई समग्रे विधिमान रावणम जित्य संयोगे, रावण को इस युद्ध के अंदर जीत करके ले जाना, अब समुद्र के लंगन के अधीन हो गया। देखो सर्व अरे सर्व स्वतंत्र भगवान श्री राम एक समुद्र लंगन के अधीन हो जाएंगे और देखो मैं भी समुद्र के लंगन के अधीन हो गई। माम नैरी काकुस्तस्य सदृशं भवे, तो देखो राम जी का यश बढ़े ऐसा काम तुमको करना है। और देखो तुम जो है सब सूरवीरों को लेकर के विचार करो और विचार करके कैसे यहाँ पार हो सकते ऐसा तुम दृढ़ता से सोचो। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा कि देखो माँ, हमारे यहाँ रीछों की कमी नहीं, बंदरों की कमी नहीं, और हे देवी सुग्रीव है सब बंदरों के राजा है और सत्य संपन्न है, आपके लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा है। आप सीता जी क्यों चिंता करती हो, आपको तो अभी मालूम नहीं है ना, इसलिए मैं आपको मालूम करने के लिए बता रहा हूँ कि करोड़ों करोड़ों बानर हैं और उन बानरों को इस लंका के अंदर आने में बड़ा उत्साह है, बड़े पराक्रम संपन्न वे बानर हैं। माँ कई कई तो ऐसे बानर हैं जो मन में सोचते हैं कि मुझे इतने समय में वहाँ पहुँचना है, बस केवल मन का संकल्प किया, संकल्प करते ही उस देश में पहुँच जाते हैं। मन संकल्प संपाता हा, निदेशे हरय स्थिता हा। इसलिए कई कई ऐसे बानर हैं, ये शाम लोपनी ना दादस्तन ना तिर्यक सज्जते गति, कोई ऊपर जाने में, नीचे जाने में, जल में जाने में, तिरछे चलने में, खड़े खड़े तिरछे चले तो तिरछे चलेंगे तो इतना जल्दी चलेंगे और दाएं चलेंगे तो इतना जल्दी चलेंगे, आगे चलेंगे तो जल्दी चलेंगे, पीछे भी उतनी गति से चलते हैं, ऊपर आकाश में, नीचे पाताल में और नीचे सागर में, सब जगह उनकी बड़ी आबाद गति है, बड़े तीक्ष्ण गति से जाते हैं। और कई कई बानर तो ऐसे हैं माँ कि उन्होंने इस सागर को एक बार नहीं कई बार पार किया है। ये तो बीच में लंका आ गई, लंका नहीं तो सागर के उस तट के ऊपर भी गए हुए हैं। जिस प्रकार से कई लोग शौकीनी से तालाब के अंदर स्नान करते हैं, ऐसे हमारे करोड़ों बानर समुद्रों को इस प्रकार से तैर तैर कर भी बहुत पार करते हैं। देखो देखो मैं क्या बताऊं सीता जी, मेरे जितने भी बानर हैं, हमने सुग्रीव के पास में जितने बानर हैं, सब बानर मद विशिष्टा और मद तुल्याश्च हैं, मेरे बराबर के हैं अथवा मेरे से ज्यादा बल वाले हैं। मेरे से छोटा कोई मुझे वहां बानर दिखाई नहीं दिया, मुझे मेरे से छोटा कोई बानर दिखाई नहीं दिया। यदि प्रकृष्टा देखो जो दूत बनाकर भेजा जाता है वो तो हे देवी छोटे से बानर को भेजा जाता है, जो बहुत बलवान होता है जिसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है उसको कभी दूत नहीं बनाते, क्योंकि दूत बना देने पर यदि कोई बड़ा शक्तिशाली बानर आकर के दूत होता तो उसको यहाँ रावण कैदखाने में डाल सकता था और कैदखाने में डालने के कारण से सेना में आपत्ति पड़ सकती थी। लेकिन छोटा मोटा बानर है, चाहे उस बानर को कोई मार दो, चाहे उस बानर को कैदखाने में डाल दो, चाहे उस बानर को बांध के रख दो, सेना में कोई फर्क न पड़े, ऐसे मुझे समझ करके भेजा गया है। मैं कोई बहुत बड़ा शक्ति वाला नहीं हूँ। तदालम परितापेन, आप कोई चिंता मत करो, मुझे मालूम है माँ के बंदर ऐसे हैं, उस सागर के वहां से यू छलांग लगाएंगे, छलांग लगाते लंका में आ जाएंगे। एकोत पाते न ते लंका एशियन की हरी उत्पा, एकोत्पात एकोत मान उत्पात कहते हैं छलांग, एक ही छलांग में वे आ जाएंगे और ऐसे बंदर वहां आ जाएंगे और मैं मेरे राम जी को लक्ष्मण जी को धीरे धीरे अपने कंधे पर लेकर के और यहाँ आ जाऊंगा। ये समुद्र लंघन के पीछे आप क्यों चिंता करो? आप कोई चिंता मत करो, ये हमारे सोचने का विषय है। आप कोई चिंता मत करो, यहाँ सब हम लोगों का जब आना होगा ना, तब आप देखना हम कैसा पराक्रम दिखाते हैं और कैसी कैसी हम लोग यहाँ पर हमारी कलाएं दिखाते हैं। इसलिए अपने मन पर तुम धीरज में रखो माँ, और बहुत जल्दी मुझे भी ऐसा लगता है लंका में जब मैं आया ऐसे सुकून लग रहे हैं, ये लंका ज्यादा देर ठहरने वाली नहीं है, ये लंका भी जलने वाली सी, यहाँ मुझे चारों तरफ आग ही आग दिखाई दी, ऐसा मुझे लगता है। तुम जल्दी ही राम को ऐसे प्राप्त हो जाओगी जैसे चंद्रमा रोहिणी को प्राप्त करता है। इसलिए देवी आप हमारी चिंता मत करो। देखो आप भी एक सागर को पार करो, मैं भी एक सागर को, मैं राम जी से भी कहूंगा कि वो भी एक सागर को पार करें। आप तो दुख के सागर को, शोक के सागर को पार कर लो और हम लोग इस जल वाले सागर को पार कर लेंगे। इसलिए चिंता मत करो। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने वहां से फिर कहा कि अब माँ आपने कहा कि आजाद ठहरो, आप मुझे जाने दो, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज जाने के लिए तैयार हुए और कहा कि मैं बहुत जल्दी ही राम को लेकर आऊंगा। हनुमान जी जो ही जाने के लिए तैयार हुए, सीता जी के मन में दुख हुआ। देखो हनुमान धनुष पाणी लक्ष्मण धनु लक्ष्मण धनुष पाणी लंका द्वार उपागतम, मैं ये चाहती हूँ कि राम जी यहाँ आए, लक्ष्मण भी यहाँ आए, लंका के दरवाजों पर वे खड़े हो करके बड़ा नाद कर करके तुम्हारे ये वानर कोलाहल करके रावण के मन में भय बैठा करके, और या तो रावण मुझे समर्पित कर दे अथवा इन रावण आदि का सबका संहार करके मुझे बड़े उत्साह के साथ अयोध्या ले जाए, नहीं तो ये रावण मुझे मुझे यहाँ जीने नहीं देगा। हनुमान जी ने कहा मारो देवी, देखो देवी रो मत रो मत, राम से विशिष्ट आपके लिए कोई नहीं है और आपके लिए भी राम से विशिष्ट कोई नहीं, राम के लिए भी आपके अतिरिक्त दूसरा कोई विशिष्ट नहीं है, ये दोनों ही आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं। हाँ आपको चिंता मत करो, क्षमा अब मुझे क्षमा करो और मुझे जाने की छुट्टी दे। सीता ने कहा एक बात और सुनो, मैं तुमको एक बात कहने भूल गई। देखो तुम्हारे जैसे प्रिय वक्ता के आने से ऐसी मुझे खुशी हुई है जैसे किसी की खेती हुई हुई हो, और जब खेती जलने लग जाए और वो खेती नष्ट होने लगे और उस समय में खूब जोर से बरसात आए, उस खेती की जैसी दशा होती है, पृथ्वी की जैसी दशा होती है, ऐसी मेरी दशा हुई है। देखो तुमने आकर के मुझे राम जी के विषय में इतनी बात कही है, एक मैं तुमको और पहचान की चिन्ह देती हूँ। देखो एक बार बार बात है कि मैनशिला का तिलक है, वो तिलक रोज लगाती थी, तो एक बार राम जी से कहना कि तुमने सीता के तिलक के नष्ट हो जाने के बाद दोबारा तिलक लगाया था ना, इतनी बात बोल देना, वो राम जी समझ जाएंगे, क्योंकि हमारी गुप्त बात थी। और ये मैंने चूड़ामणि दे दी है, इसके साथ भी जो घटनाएं मैंने बताई है, चाहे वायस की बताई हो और चाहे और घटना बताई हो, ये घटना केवल मेरे और राम के बीच की घटना है, इन घटनाओं को लक्ष्मण को भी पता नहीं है। अब देखो मैंने मेरी चिन्ह की सब चीजें दे दी, अब तुम जल्दी से जाकर के और राम जी को मेरे विषय की बात बता देना। अब तो केवल जीने का एक ही आधार है कि तुम राम जी को ला रहे हो और सेना आ रही है, समुद्र को पार कर रही है, जल्दी ही मैं यहाँ से चिंता मुक्त हो जाऊंगी, बस यही 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 भाव मेरे मन में बार बार आ रहा है। सीता के वचनों को सुनकर के फिर हनुमान जी ने उनको कहा कि देखो मैं सत्य की सुगंध खा के कहता हूँ कि हे देवी, हाँ राम है वो आपके शोक के कारण से अभी एकदम उदासीन बैठे हुए हैं। वो बेचारे आपकी जो है प्राप्ति के लिए पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं, परंतु शोक उनको छोड़ता नहीं है और लक्ष्मण जी उनको बराबर संभाले हुए हैं। फिर भी लक्ष्मण के मन में भी तो बड़े भाई का शोक है ही ना। ओहो दृष्टा कथंचित भवति न कालः परिदेवितुम्। देखो एक बात है, अब जो इतनी बात हो गई, अब जो है आप कष्ट मत पाइए। समय का प्रभाव सब पर होता है। देखो देवी, एक जैसा समय किसी का नहीं रहता है। आपका भी सुख का समय आज नहीं है तो ये दुख का समय भी आगे रहने वाला नहीं है। समय परिवर्तनशील है, ये बात मनुष्य दुख में देखता है, सुख के अंदर याद नहीं रखता। सुख के अंदर भी उसको यही सोचना चाहिए ये सुख के दिन रहने वाले नहीं है। और दुख के अंदर वो सोचता है कि देखो मेरे पर कैसे आफत आ गई, मेरा सुख छीन लिया गया। काल बड़ा प्रबल है, काल प्रबल है तो दोनों पर है ना, तो दुख के दिन भी तो आपके पास नहीं रहेंगे। काल बड़ा प्रबल है, दुख भी नहीं रहेगा, ऐसा आपको विचार रखना चाहिए। देखो राम और लक्ष्मण के आने पर ये लंका भस्म हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हे विशालाक्षी, राम और लक्ष्मण दोनों इस पुरी में जरूर आएंगे और वो आकर आपको निश्चित रूप से ले जाएंगे। ऐसी मेरे अंदर प्रीति माने हर्ष की भावना पैदा हो रही है, ऐसे ऐसे शकुन हो रहे हैं और मेरे अंदर ऐसी जो है प्रेरणा सी हो रही है कि अब राम और सीता दोनों इस लंका की भूमि पर ही मिलेंगे। ओहो एतदेव रामस्य दृष्ट्वा यत्नेन भूषणम् सद्येयम् हनुमान वाक्यम् तव वीर भविष्यति। हनुमान तुम्हारे इन वाक्यों पर मैं श्रद्धा कर रही हूँ, बस यही मेरे डूबती हुई सीता के लिए एकमात्र नौका है शोक रूपी सागर में डूबने के डूबने से बचने के लिए। हनुमान तुम्हारे वाक्यों में मेरी श्रद्धा होगी, यही मेरे लिए नौका है, इन वाक्यों के अंदर बैठ जाऊंगी और मैं शोक सागर से पार हो जाऊंगी। देखो तुम मणि जरूर दे देना और तुम प्रणाम जरूर बोल देना। देखो तुम याद रखना हनुमान वे सिंह के समान पराक्रमी राम और लक्ष्मण इन सबको मेरी ओर से, सुग्रीव को मेरी ओर से, सुग्रीव के बानरों को मेरी ओर से, सबसे मेरी ओर से कुशल की बात कहना और उनको कहना कि देखो मैं सीता को देख के आया हूँ। सीता आपके बिना बहुत दुखी हो रही है, आपको जल्दी से जल्दी सीता के पास जाने का प्रयत्न करना चाहिए। हे हनुमान मेरे तीव्र शोक को तुम राम के पास मेरी भेंट समझ करके अर्पित कर देना। हे हनुमान मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। हनुमान तुम्हारी सदा विजय हो। हनुमान तुम्हारी अखंड कीर्ति सदा फैलती रहे। इस प्रकार से राम जी महाराज की पत्नी सीता जी ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी महाराज वहाँ सीता जी को प्रणाम करके और आगे चले गए अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में जा एक जगह बैठते हैं। अब अच्छा दूसरा प्रसंग चलता है। वो वहाँ पर सोचते हैं, चारों तरफ अशोक वाटिका को देखते हैं, फिर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं। वृक्ष ऊपर चढ़ करके और पूरी लंका को देखते हैं। देखने के बाद सोचते हैं कि मैं यहाँ आ तो गया लेकिन अभी मेरा थोड़ा अभी मेरा बहुत थोड़ा सा काम हुआ है। सीता को देखा बस इतने ही तो काम हुआ है, इतने काम के लिए तो आया नहीं, अभी तो मुझे और काम करना चाहिए। काम करते समय में मनुष्य को चार बातें ध्यान में रखनी पड़ती है, साम दान भेद और दंड, ये चार बार। तो इन चारों में से राक्षसों के पास में साम की बात करें, शांति की बात करें, तो भाई यहाँ शांति तो होने वाली है नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं आग है, आग इसमें पानी डालो तो ये तो आग चिड़चिड़ करेगी, ज्यादा पानी से काम करने वाला नहीं, शांति से लोग मानने वाले नहीं। इन राक्षसों के एक एक इतने बड़े बड़े महल है, हम लोग इनको कोई धन का लालच दे सकते नहीं। और इन राक्षसों में यहाँ इतनी एकता है, एक रावण के पाप को सब राक्षसों ने कैसे एक होकर के स्वीकार कर लिया, आकाश में देखो कितने बाघ कितने राक्षस फिर रहे हैं, कोई लंका में आ न जाए। प्रकोटों पर कितने राक्षस घूम रहे हैं, कोई आ न जाए। दरवाजों पर कितने यंत्र लगाए हुए हैं कि कोई आ न जाए। इतना बड़ा प्रबंध है और वे सब रावण के पाप को एक साथ एक संगठित होकर के स्वीकार कर रहे हैं। अतएव इनमें कोई दंड इनमें कोई भेद भी नहीं चल सकता, क्योंकि बड़ा विचित्र इनका काम है, एकता इनकी बड़ी विचित्र है। अतः अब तो केवल पराक्रम ही दिखाना चाहिए। यदि मैं कुछ पराक्रम नहीं दिखाऊंगा तो लंका का पराक्रम कैसे जानूंगा? लंका के शस्त्र के आगार को मैंने देख लिया, लंका के और तो सब मैंने देख लिया कि यहाँ बुद्धि कितनी है, शस्त्र कितने हैं, लेकिन साक्षात कुछ बात किए बिना यहाँ के प्राणियों के भाव और पराक्रम का ज्ञान नहीं होता। कभी कभी तो किसी आदमी से नहीं मिलते हैं तब तक वो बहुत बड़ा दिखता है, और जब उस आदमी से जाकर मिलते हैं तब लगता है कि नहीं नहीं इससे ज्यादा बल तो हमारे पास है। और जब शत्रु को हम अपने से ज्यादा बलवान मानते हैं तब उसको जीतना बड़ा मुश्किल है, और शत्रु को हम यदि अपने से कम बलवान मानते हैं तो उत्साह पैदा होता है। तो ये रावण हमसे ज्यादा बलवान है या कम बलवान है, इसका निर्णय तो एक एक धर्म के द्वारा तो हो चुका, क्योंकि धर्म का बल हमारे पास ज्यादा है, अतएव ये धर्म के द्वारा हमको दबा नहीं सकता है। दूसरा इसके पास राजनीतिक बल है, राजनीतिक बल के अंदर सेना है, कोष है और सैनिक है, ये सब इसके पास बल है, अतएव ये जरूर मुझे देखने चाहिए। पर ऐसे कैसे देख सकता हूँ, सीधा रावण के पास कैसे जा सकता हूँ? हाँ एक काम करो, यहाँ ये राक्षस मुझे दिखाई देते हैं, इन राक्षसों को मैं मारना चालू करूँ। इन राक्षसों को मारूंगा, मारने पर ये राक्षस लोग रावण के पास में मुझे ले जाएंगे, तब रावण के साथ कुछ संवाद होगा। संवाद होने के बाद में फिर जो है रावण के बलाबल का ज्ञान होगा। इसलिए थोड़ा मुझे विशेष काम करना चाहिए, परंतु सीधा ही राक्षसों को मारू ऐसा भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि मुझसे कहा जाएगा कि तुमने इन राक्षसों को क्यों मारा, तो मारा तब जाए तो कोई इनको विरोध खड़ा हो। अच्छा अच्छा, तो इस विरोध के लिए मुझे कोई बात सोचनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरा काम बहुत बड़ा बाकी है, क्योंकि परात्म संवर्ध विशेष तत्वित अपना और शत्रु का बल ये देखना तो सबसे पहले दूत का काम होता है। सीता यदि मर भी जाए, सीता के मरने के बाद भी राम रावण को युद्ध के बिना नहीं छोड़ेंगे और राम रावण को नहीं छोड़ेंगे। माना कि रावण ने सीता को मार दिया, क्या सीता के मारने के बाद राम युद्ध नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने पाप किया है और पाप का फल उसको देना है। सीता की उपलब्धि अथवा सीता की अनुपलब्धि ये राम जी के प्रारब्ध पर निर्भर है, परंतु राम जी का कर्तव्य का बोध इसी बात में है कि वे हर हाल में रावण के साथ संघर्ष करें। इसलिए मुझे यहाँ का बल पराक्रम सब देखना चाहिए और अपने बल का भी निर्णय करना चाहिए, जो तो मुझे मालूम ही है, क्योंकि मेरे सेना के अंदर ऐसा कोई सैनिक नहीं है जिसके बल को पराक्रम को स्थान को मैं नहीं जानता हूँ। सब कुछ जानता हूँ, परंतु हाँ रावण के विषय में मैं बिल्कुल अज्ञात था। इसके महल को मैंने देखा, हाथी घोड़ों को मैंने देखा, शस्त्रागार देखा, बहुत बड़े बड़े तहखाने देखे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखी, परंतु और मैंने अभी तक ज्ञान नहीं किया है, सो मुझे करना चाहिए। इनके मंत्रियों का भी ज्ञान करना चाहिए। मंत्रों का ज्ञान कब होगा? कि जब मुझे रावण के पास ले जाया जाए और वो मंत्र लोग क्या बात बोलते हैं, उन बातों को मैं सुनकर के निर्णय करूं। हाँ ये बड़ा अच्छा काम है। यदि ऐसा होता है सुखे न मत्वा अहमिता पुनर्मजे, तब मैं बड़े आनंद के साथ यहाँ से जाने में सुखी बनूंगा। ऐसा विचार करके हनुमान जी ने देखा कि क्या काम करें जिससे कुछ खटपट पैदा हो। देखा इधर उधर, देखा उस मकान को तोड़ दूं। उस मकान को तोड़ने में तो पहला अपराध मेरा होगा, वहां जाकर कुछ उत्पात मचाऊं तब भी ठीक नहीं है। अरे अरे इतने दूर जाने की जरूरत क्या है, ये अशोक वाटिका साक्षात नंदनवन है, ये तो चैत्र रथ वन है और ये बहुत सुंदर अशोक वाटिका रावण ने बनवाई है। रावण ने तो खैर क्या बनाई, बनाई तो विश्वकर्मा ने है, पर रावण को अशोक वाटिका बहुत प्रिय है। अरे ये तो नेत्रों को और मन को बड़ा आनंदित करने वाली है, देखो कैसे कैसे दुर्लभ वृक्ष यहाँ लगाए हुए हैं। हाँ ऐसा करूँ, इस अशोक वाटिका को ही मैं उजाड़ना चालू करूँ और एक एक वृक्ष को उखाड़ फेंकूं, उत्पात मचाऊं। उत्पात मचाने पर ये अशोक वाटिका के रक्षक लोग मेरी तरफ आएंगे और फिर मैं इनको मारूंगा ही। मैं मारूंगा तो रावण फिर चिल्लाएगा, रावण फिर मुझे बुलाएगा, फिर मैं रावण के पास जाऊंगा और रावण के पास जाकर के और फिर मैं जो है रावण के बल बल का विचार कर लूंगा। ऐसा भी होगा कि रावण पहले सेना भेजेगा, रथ भेजेगा, शस्त्र भेजेगा, तो मैं उन शस्त्रों को सब देखूंगा और वो लोग मेरे पर कैसे प्रहार करते हैं, मेरे में कितना बल है वो देख लूंगा। यदि कदाचित कोई मुझे विशेषता से मारने भी लगे, क्योंकि संसार में कोई एक मैं तो नहीं हूँ कि सबसे बड़ा हूँ, ऐसा तो है नहीं, ये राक्षस मुझको मारने के लिए भी दौड़ सकते हैं। इस आकाश मार्ग से इतना जल्दी ऊपर चला जाऊंगा और जल्दी से जल्दी मैं उधर समुद्र के उधर चला जाऊंगा, फिर वो किसी प्रकार से मेरा पीछा करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वायु का पुत्र हूँ और पिता मेरी इस समय में रक्षा करेंगे। यदि मैं यूं चलूंगा तो मेरे लिए तो मेरे पिता मुझे अनुकूल करने के लिए यूं चलेंगे और यदि राक्षस को मेरा पीछा करेंगे तो मेरे पिता उनके सामने सामने के रूप में चलेंगे, वो बहुत कठिनाई से मेरा सामना करेंगे, मैं तो पहुंच जाऊंगा। बचने का भी खूब उपाय है, लड़ने का भी खूब उपाय है, जरा थोड़ी छेड़खानी करते हैं क्या होता है, कैसे कैसे आते हैं ये अपने पास में। मुझे पकड़ने के लिए तो बड़े बड़े पराक्रमी लोग आएंगे, जब इन बड़े बड़े पराक्रमों का बल अभी मैं देख लेता हूँ।